ओम शांति। हमारी फुल स्टॉप सीरीज पूरी हुई। अभी हम एक कुछ दिनों के बाद एक नई सीरीज चालू करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ। तो वो हम 25 तारीख से चालू करेंगे और बीच में हमारे पास कुछ समय है, तो जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रश्नों से पार। क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न है, यू तो बाबा ने किसी मुरली में बताया नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर से बार बार संकल्प आ रहा है कि अगर मुझे श्री कृष्ण का टीचर बनना है तो उसके लिए अभी क्या पुरुषार्थ करें। जिसने प्रश्न पूछा होगा वो हो सकता है कि शिक्षक ही है, तो भी मन में ऐसा संकल्प उत्पन्न हुआ है तो क्या उत्तर देंगे इसका, कि बाबा ने मुरली में तो नहीं बताया है, परंतु बार बार संकल्प आ रहा है कि अगर मुझे श्री कृष्ण का टीचर बनना है तो उसके लिए अब क्या पुरुषार्थ करें। इस समय जो श्री कृष्ण की आत्मा है ब्रह्मा बाबा, उससे पढ़ ले, और क्या करे। शिक्षक बनना है तो क्या किया जाए। और वो भी किसका शिक्षक बनने की इच्छा है, विश्व महाराजन का। तो श्री कृष्ण का टीचर बनना है तो उसके लिए अभी क्या पुरुषार्थ करें, क्या उत्तर हो सकता है, और क्या उत्तर हो सकता है। विनोद भाई, श्री कृष्ण का टीचर बनने की इच्छा है इस आत्मा को, तो उसे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए।
कम से कम 20-25 वर्ष पहले से ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो
पुरुषार्थ क्या करे उसके बारे में बताइए।
अभी जब नहीं बन सकता दूसरा श्री कृष्ण,
पढ़ाई ज्यादा पढ़नी पड़ी, और जिसको पढ़ा रहे हैं उसकी कितनी कलाई है, उसकी कितनी कलाई है, 16। तो जिसको पढ़ाना है उसके पास कितनी कलाएं होनी चाहिए। उससे डबल, उससे डबल या उससे भी ज्यादा। जितनी कलाएं जिसको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाले के पास उससे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, सब कुछ जिसको पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है कि पढ़ाना या शिक्षा देना, सबसे पहले तो यह महत्वपूर्ण है कि पढ़ाने वाला जो है या शिक्षक जो है या गुरु जो है वो कैसा है। दो प्रकार के गुरु है, एक है निर्बीज गुरु, सीडलेस, एक है सबीज गुरु, विद सीड। जो यथार्थ गुरु होगा, वास्तविक गुरु होगा, वो गुरु निर्बीज गुरु होगा। निर्बीज गुरु अर्थात उसका ये आग्रह नहीं है कि तुम मेरे शिष्य बनो। निर्बीज गुरु अर्थात वो ये नहीं कहता है कि मुझे शिष्य चाहिए। निर्बीज गुरु अर्थात वो ये नहीं कहता कि मैं किसी को पढ़ाऊं, किसी को शिक्षा दूं, ये सब चीजें वो नहीं कहता है। वो शब्दों के तलों पर कम और अनुभव के तलों पर अधिक कार्य करता है। निर्बीज गुरु जो है वो कभी भी किसी को वैसी शिक्षाएं नहीं देता जैसे कोई टीचर शिक्षा देता है। सिखाने का भाव है परंतु वैसे नहीं जैसे टीचर का है। वो आग्रह नहीं है कि कोई मुझसे सीखे या मैं किसी को सिखाऊं, उससे तो अहंकार की ही पुष्टि होती है। दूसरा जो गुरु है वो सबीज गुरु है। वो वास्तव में गुरु भी नहीं, वो टीचर है। और टीचर सिखाता जरूर है, टीचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसके अपने अहंकार की भी वो तृप्ति करता है। इसलिए प्रश्न है कि सबसे पहले तो प्रश्न ही क्यों उत्पन्न हुआ है। प्रश्न उत्पन्न होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि यह आत्मा खुद ही टीचर है और सिखाते सिखाते अभी अभी अगर ज्ञान में आ गई है तो यहाँ का ज्ञान सुनने के बाद वो जो सिखाने का भाव है वही भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है कि यहाँ पर सर्वोच्च आत्मा श्री कृष्ण है, तो क्यों ना उसी को सिखाया जाए। और यहाँ सारा जो पुरुषार्थ बताया जा रहा है वो पुरुषार्थ बताया जा रहा है सतयुग में उच्च पद पाने का, तो सर्वोच्च पद श्री कृष्ण का है, तो क्यों ना उसे ही सिखाया जाए। भाव बहुत सुंदर है, अच्छा है, परंतु जो बात कही निर्बीज गुरु की और सबीज गुरु की, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि हम उसका टीचर बने, परंतु ये इस भाव से जागृत ना हो कि हम उससे भी श्रेष्ठ बने या उससे भी श्रेष्ठ मुझे बनना है, यह अहंकार भी उस प्रश्न के पीछे छिपाना हो, पहली बात तो ये। और जो कहा गुरु शब्दों के तलों पर नहीं अनुभव के तलों पर सिखाता है, संसार में जितने गुरु हुए हैं, जितने भी महान गुरु हुए हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास आओ। बुद्ध ने कभी किसी को सिखाने का आग्रह नहीं किया, बुद्ध ने तो कहा कि गुरु को भूल जाओ, बुद्ध ने कहा कि मेरे पास नहीं आओ। तो वो एक दूसरा पहलू है। प्रश्न फिर भी वैसा ही बचता है कि श्री कृष्ण का गुरु मुझे बनना है तो मैं क्या करूं, टीचर उसका बनना है वो भी सतयुग में। तो जो बात कही कि जिसका टीचर बनना है उसमें जितनी कलाएं है उससे अधिक डबल हमारे पास होनी चाहिए। और श्री कृष्ण अभी कौन है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कलाएं, जो कुछ भी खूबियां, जो कुछ भी विशेषताएं, जो कुछ भी पुरुषार्थ, जो कुछ भी मेहनत, जो कुछ भी श्रीमद का पालन उसने किया, वो सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। साहित्यिक दृष्टि से बहुत सुंदर प्रश्न है, परंतु व्यवहारिक ये बन जाए, इसका मार्ग है तीव्र पुरुषार्थ। बुद्धि को बहुत सुख देता है यह प्रश्न, परंतु अहंकार का रूप न ले ले। और वास्तव में यदि ऐसा बनना है सतयुग में श्री कृष्ण का कोई टीचर, परंतु ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं, जरूरी नहीं है कि कृष्ण का जो पिता है वो कृष्ण से बड़ा है, जरूरी ये भी नहीं है सतयुग में कि श्री कृष्ण का जो टीचर है वो श्री कृष्ण से बड़ा है। हमेशा कहते हैं बाबा कि महिमा कृष्ण की है, उसके बाप की उतनी महिमा नहीं है। जो उसको पढ़ाने वाला है जरूरी नहीं है कि वो उससे बड़ा है, वो एक साधारण सा व्यक्ति है। जितने संसार में महान व्यक्ति हुए हैं, जीजस के पिता को कोई नहीं जानता है, वो उससे भी महान नहीं था। उसी तरह सतयुग में श्री कृष्ण सर्वोच्च है। हाँ, उसको पढ़ाने का एक संकल्प है, ये बात अच्छी है, परंतु अगर वास्तव में बनना ही है तो पुरुषार्थ भी वैसा होना चाहिए। जो जो उसने पुरुषार्थ किया, जैसा जैसा उसने पुरुषार्थ किया, वैसा हम पुरुषार्थ करें। स्टूडेंट
बनने वाले ने जो किया पुरुषार्थ,
क्या बनने वाले,
जिसका शिक्षक बनना है,
जिसका शिक्षक बनना है, तो उसने जो पुरुषार्थ किया उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लक्ष्य तो ज्यादा का ही रखो, तो कम से कम उतने उसने जितना किया उतना हम कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ बात कोई साधारण स्टूडेंट्स की नहीं हो रही है, ये सब सबसे टॉप मोस्ट नंबर वन स्टूडेंट से आगे जाने का संकल्प है। जैसे किसी को यदि टॉपिक दिया जाए हाउ टू गो अहेड ऑफ सीनियर तो डर जाते हैं लोग, ये टॉपिक पे हम नहीं बोल सकते कि जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई है उनसे आगे कैसे जाओ इस पर बोलो, ये टॉपिक पर कोई नहीं बोलता है, क्योंकि ये टॉपिक ही टॉपिक क्या करने वाला है, हिलाने वाला है किसी को हमने कहा था इस पर बोलो तो बाप रे बोले ये तौंतरी हो गई है, कोई टॉपिक है हाउ टू गो अहेड ऑफ सीनियर्स। क्योंकि यहाँ बात अहंकार की नहीं है, यहाँ तो आप कितना भी करो, मतलब ऐसा भी नहीं कि निराश करने वाली बात है कि उसको निराश कर देना है, तुम जा ही नहीं सकते। बाबा तो खुद कहते तुम मेरे से भी आगे जाओ, वो कहना उसकी अलग बात है, पर हम ये अगर अहंकार दिखा दे कि मैं उसके भी आके जाके दिखाऊंगा तो वो पुरुषार्थ रह जाएगा बाजू में और अहंकार ही पुष्ट होगा संकल्प से। उसी तरह ये जो प्रश्न बड़ा नाजुक प्रश्न है, वो कौन बन गया क्या बन गया अभी हम नहीं कह सकते, तो वहां तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, विषय कोई एक नहीं है, साहित्य है, नाट्य है, गायन है, नृत्य है, कितने सारे अलग 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 बोलने की कला, बहुत सारे शिक्षा अलग अलग विषय होंगे, तो विज्ञान भी होगा, विज्ञान भी तो सिखाएंगे, हर तरह का सिखाएंगे, इतिहास छोड़कर, इतिहास तो अभी बना ही नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखा सकते हैं जितनी है, भूगोल का ज्ञान देंगे, परंतु इतिहास तो वहां हुआ ही नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं हुआ, सेकंड जनरेशन से भले हिस्ट्री का विषय चालू हो सकता है कि भाई तुम्हारे दादा कृष्ण उन्होंने ऐसे ऐसे किया तुम्हारे काका कृष्ण ने ये किया, वो हो सकता है, परंतु फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं हो सकता। यहाँ बात फर्स्ट जनरेशन की चल रही है कि श्री कृष्ण का टीचर बनना है। पहली बात तो ये जो भी आत्मा है इसने अभी संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन नहीं किया है। अगर गहराई से मुरलियों का अध्ययन, अव्यक्त वाणियों का अध्ययन यदि किया है तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि इस प्रश्न में भी कामना है, इच्छाएं है, इसमें एक अभी एक आकांक्षा है कुछ इस तरह का बनने की, इसमें भी एक भाव है कि दूसरे जान ले, यदि बाबा कर कह दे कि तुम बनने वाले हो, किसी एक आत्मा को बोल दे ऑफिशियली अधिकृत रूप से, एक आत्मा को कह दे कि बच्चे तुम श्री कृष्ण के टीचर बनने योग्य हो और मैं देख रहा हूं कि तुम ही हो, तो वो आत्मा तो बहुत अच्छा है, सुनने को तो बहुत अच्छा है और वो बन भी रही हो, परंतु कितना नुकसान है उस आत्मा को इस भविष्यवाणी से, कितना अहंकार जागृत हो सकता है कि मैं श्री कृष्ण का टीचर हूं, तुम्हारा नहीं, तुम जिसको फॉलो कर रहे हो उसका मैं टीचर हूं तुम उसको छोड़ो अब तुम मुझे फॉलो करो ये भी भाव आ सकता है। तो प्रश्न एक है पर परतें बहुत सारी है उसकी, अहंकार की एक परत है, अभी इच्छा की एक परत है, अज्ञान की भी परत है कहीं ना कहीं, एक मोह की एम्बिशन की परत है, एक बहुत बड़ी उच्चाकांक्षा है इसमें, एम्बिशियस माइंड है ये, इस तरह का सोच रहा है, वो भी एक परत है। दूसरा कि सीखने, मतलब ये अगर वास्तव में हम ये नहीं कह रहे कि इस आत्मा का भाव ये होगा, भाव अच्छा ही है, हो सकता है 30 साल लंबे समय से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते ज्ञान में आ गए तो ये प्रश्न उठ सकता है, परंतु फिर अगर वास्तव में बनना ही है तो फिर ये संकल्प करो कि उसमें 16 कलाएं हैं तो मुझ में कितनी होनी चाहिए, 32, उससे डबल कलाएं, उससे अधिक कलाएं, उसने जो पुरुषार्थ किया उसने अशरीरीपन का पुरुषार्थ इतना समय किया, मुझे उससे ज्यादा करना है, उसने ऐसा ऐसा चार्ट बनाया मुझे उससे ज्यादा कहना है। केवल ये कहने से नहीं होगा, हम तो बाप की याद में है ही, आज की मुरली में है, खास नोट करना है, उधर भी लोग अपने दिन भर की हिस्ट्री को नोट करते हैं, खास नोट करना है कि हमने बाप को कितना समय याद किया, ये खास नोट करो, ये पुरुषार्थ है। तो जो पुरुषार्थ की गहराई में ब्रह्मा उतरा, उसी पुरुषार्थ के तल में गहराई में हमें उतरना है, मुझे उतरना है, मुझे करना है, तो कहीं जाकर श्री कृष्ण का भी टीचर बन सकता हूं, बन सकती हूं, संभावनाएं बहुत है। टीचर श्री कृष्ण का टीचर बहन होगी या भाई, ये इस प्रश्न पर सोचना। Thank you. महिला टीचर नहीं हो सकती, आपने देखा है। तो संकल्प अच्छा है परंतु पुरुषार्थ और करो, जो उसने किया ना वो करो, जो जो उसका पुरुषार्थ था वो और उससे भी अधिक करने का संकल्प। अगला प्रश्न है, कोई संग दोष में जा रहा है या उसमें लिप्त हो चुका है तो उसको कैसे पहचाने और उसकी पहली निशानी क्या होगी तथा इसे समझने के बाद उसे उस संग से सावधान कैसे किया जाए ताकि वो संग दोष के नुकसान से बच जाए। कहीं कहीं सब कुछ समझते जानते हुए भी किसी को सावधान भी नहीं कर सकते और खुद को शांत भी नहीं रख सकते, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें और संग दोष एवं देखा देखी में क्या फर्क है, कृपया इसके बारे में स्पष्टीकरण करें। बड़ा प्रश्न है, बहुत सारी बातें हैं। कोई संग दोष में जा रहा है तो पहला प्रश्न है कि उसको कैसे बचाए। एक प्रश्न ये भी है कि वो संग दोष में जा रहा है तो हम कैसे पहचान ले। ये भी प्रश्न है कि वो जा रहा है तो उसको सावधान कैसे करें। ये भी प्रश्न है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या करें। और ये भी प्रश्न है कि खुद को शांत भी नहीं रख सकते तो क्या करें। और ये भी प्रश्न है कि संग दोष और देखा देखी में क्या फर्क है, क्या करें। कोई संग दोष में जा रहा है, संडे की मुरली पहले वहां से शुरुआत करते हैं, माताओं से मुलाकात, दूसरी मुरली 7 तारीख अप्रैल मास 83। माताओं के 3 प्रश्न हैं, एक बच्चे को ज्ञान में कैसे लाए, दूसरा पति सहयोग कैसे दे और तीसरा परिवार सहयोगी कैसे बने। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सूरज भाई ने इस मुरली के रिवीजन में कहा है कि बाबा से माताएं कहती है कि बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, बाबा कहते हैं ताले की चाबी मैंने तुमको दे दी है, चाबी तुम्हारी जेब में है तो मैं कैसे खोलूं, चाबी तुम्हारी जेब में है पर तुम राइट नहीं लगाते, राइट की बजाय लेफ्ट लगा देते हो, घुमाते लेफ्ट हो, यही तुम्हारी गलती है। उस पर भी एक दूसरी मुटली है बहुत पहले, तो वो तो दूसरी बात है। अभी बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे कुसंग में जा रहे हैं, पति बिगड़ रहा है, पति कुसंग में जा रहा है। लोकमान्य तिलक का उदाहरण है कि उनकी जो बेटी थी, उनका जो बेटी का पति था, उनके दामाद, वो पहले बहुत अच्छे थे धार्मिक, पर बाद में थोड़ा थोड़ा कुसंग में जाने लगे। पहले तो गीता वगैरह पढ़ते थे, तो जब बहुत ज्यादा कुसंग में जाने लगे तो बेटी दुखी रहने लगी, तो उन्होंने, ये कितना सत्य है मुझे पता नहीं परंतु सुना है हमने कहीं से, उन्होंने फिर उस बेटे को बुलाया, दामाद को, और कहा कि, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये करो या वो करो, ऐसी शिक्षाएं नहीं दी उन्होंने, कहा, उनको पता तो चल गया कि दामाद कुसंग में चला गया है, उसको नई नई आदतें लग रही, उनको उसने कहा कि तुम पहले गीता पढ़ते थे ना, उसने कहा पढ़ता था, तो अभी तो टाइम ही नहीं है उसके पास, क्योंकि कुसंग में व्यक्ति जाता है तो समय कैसे चला जाता है पता नहीं चलता है, दोस्त और मित्र और वो सब बातों में। तो कहता है तुम रोज जाओ भले, पर जाने से पहले ये जो गीता है ना, इसका एक श्लोक और उसका जो अर्थ है उतना पढ़ के जाना रोज, बस इतना पढ़ना और फिर जाना। तो वो कहता है इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो टाइम तुम निकालो, कम से कम एक ही बस, ज्यादा नहीं। उसने कहा ठीक है चलो, और वो पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, रोज ऐसे करते जाता है, और धीरे धीरे अचानक एक दिन बुद्धि खुल जाती है, स्मृति आ जाती है मैं क्या करता हूं, और सही मार्ग पर आ जाता है। तो ये एक प्रसंग है इतिहास का। तो माताओं के लिए बाबा ने ये सारे प्रश्न है, तो माताओं को क्या क्या कहा बाबा ने, उस संडे की मुरली में रिवीजन में बताया था, अष्टलीला है, सेवाधारी, निमित्त, ट्रस्टी, ये 3 बातें तो अच्छी है, एक ये 3, 8 बातें हैं और 2 बातें याद रखनी है वो तो दूसरी है। ये 3 अपने आप को समझो, सबसे पहले तो निमित्त सेवाधारी समझो, ट्रस्टी समझो, और क्या समझो, वो 2 बातों में अलग है। सबसे पहले निमित्त सेवाधारी स्वयं को समझो, ट्रस्टी समझो, और क्या समझो, ट्रस्टी, निमित्त, सेवाधारी, इन तीन को ले लो। ये बातें हम नहीं कह रहे, बाबा ने कहा उनके प्रति जो भाव कौन सा है, मेरे बच्चे, हद का भाव है। वहां दो बातें लाओ, एक तो है बेहद की आत्मिक दृष्टि, हद का भाव नहीं रखो। जैसे बाहर वालों के लिए कैसी से बेहद की दृष्टि है, वैसे बेहद की आत्मिक दृष्टि, बाबा के शब्द में। दूसरा, भाई भाई की वृत्ति। ये दो बातें और तीन बातें थी। तीन बातों में धैर्य, उतावलापन नहीं चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, इनको आना चाहिए। दूसरा, साक्षी भाव। और तीसरा, शांति और शक्ति का सहयोग। तीन, दो और तीन। तो निमित्त माताएं जो है, हाँ, पहली बात थी लौकिक में अलौकिक, लौकिक में अलौकिक, निमित्त सेवाधारी, तीसरा ट्रस्टीपन की स्मृति। ये तीन स्मृतियां रखनी है। देखो, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आई है, जन्म से ही लेकर आई है। ऐसा आवश्यकता नहीं है कि आप हरेक को बदल सकते हो। यहीं पर इसी क्लास में एक बहन ने बहुत सुंदर क्लास कराया था, यहीं पर बैठकर, बहुत सुंदर, कुछ सालों पहले। और यहीं से जाने के बाद, तब वो कुमारी थी, यहीं से जाने के कुछ मास के बाद ही विवाह कर लिया। जैसा लग ही नहीं रहा था, इतना पावरफुल क्लास यहां पर कराया था। अगर वहां की बहन जी या वहां के दूसरी ब्रह्मा कुमारी या जो उसके संपर्क में है, उसे कितना भी समझा दी या कुछ करती या कैसे भी उसको मना दी, क्या वो रुकती? आत्माएं हमारी आंखों के सामने, अंडर अवर नोज, कुसंग में जाएगी। साथ में ये भी याद रखना है, जैसे माताओं के लिए कहा धीरज, साक्षी भाव की सीट, और तीसरा शांति और शक्ति का सहयोग उन आत्माओं को देना है। लौकिक में अलौकिक, ट्रस्टी, निमित्त सेवाधारी। हम केवल निमित्त बनकर उनको समझा सकते हैं, जरूरी नहीं हम उनके मन को बदल दे पूरी तरह से। हाँ, हमारे हृदय में आज के वरदान में कहा है मर्सी इमर्ज हो, रहम इमर्ज हो, माना, परंतु हम यदि समझाए जाए तो हमको वो शत्रु ही समझेंगे, ये भी हो सकता है। इसके लिए हमारे, जो हमारे आंखों के सामने कुसंग में जा रहा है, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि का भाव, बेहद के आत्मिक दृष्टि, उसके साथ एक दूसरी दृष्टि भी जोड़ी थी, कल्याण की दृष्टि। दृष्टि में भी आत्मिक दृष्टि और कल्याण की दृष्टि। सोचो, वो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी बाहर का कोई व्यक्ति है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, पर सोचो वो हमारा ही भाई है या बहन है, और अब तक ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बनकर चल रहा था, अभी अभी कुसंग में हो गया, चला गया, तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? हमको होता है, क्योंकि हमारा ममत्व उतना ज्यादा है। और यही ममता बाधा है हमारी सकाश उन तक पहुंचने के लिए। बाबा ने क्या कहा उस दिन, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी वस्तु, ये भाव जब तक है तो ये भाव पहुंचने नहीं देगा, ये हद का भाव है, तुम्हारी शुभ भावना उस तक नहीं पहुंचेगी। ब्लड कनेक्शन से सोल कनेक्शन कई गुना, 100 गुना, पदम गुना अधिक शक्तिशाली है, उस दिन बताया था। इसलिए यहां पर एक उत्तर तो ये है कि हाँ, हम प्रयत्न जरूर करें उसको रोकने का, उसको बचाने का, उसको समझाने का, पर उस प्रयत्न में भी साक्षी भाव हो, उस प्रयत्न में भी आत्मिक भाव हो, उस प्रयत्न में भी ये नहीं हो क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि मेरी तुम पर मालकियत है। किस पर हमारी मालकियत? यहाँ किसी पर भी नहीं। मालकियत का भाव रखना ही बहुत बड़ा दोष है। माँ बाप सोचते हमारे बच्चे ज्ञान में चले, अरे वो तुम्हारे बच्चे कहां से हो गए? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है बहुत बड़ी, उसमें कहा है कि माँ बाप को वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, अपनी मालकियत मत जमाओ उसके ऊपर। परिग्रह का अर्थ क्या है? परिग्रह अर्थात मालकियत की आकांक्षा, अपरिग्रह अर्थात मालकियत के ओनरशिप जो है वो छोड़ दो। कौन तुम्हारा, तुम किसके हो? संडे की मुरली, मैं मेरा क्या करता है, मैला करता है तुमको, देख लिया क्या करता है। एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी को भी मैं कहा तो मैले हो जाओगे। मालकियत क्यों कर रहे हो किसी के ऊपर? पोजेशन क्यों है? नॉन पोजेशन, अपरिग्रह। जैन के 5 महाव्रतों में ये व्रत 3 नंबर पर रखा है, 3 या 4। अपरिग्रह, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, कहीं पर भी मालकियत नहीं है। ये जो बिल्डिंग वगैरह है, बाबा ने कहा है आज की मुरली में झगड़े होते हैं, आज की साकार मुरली तुम्हारी नहीं है, मालकियत मत दिखाना किसी के ऊपर भी, तुम्हारा कुछ भी नहीं है इधर, ना तो व्यक्ति, ना तो वस्तु, ना तो स्थान। तो अभी सबसे पहले इस आत्मा की यदि मदद करनी है, वो लिप्त हो चुका है तो क्या करना है? लिप्त हो चुका है तो उसके प्रति शुभ भावना, साक्षी भाव भी रखना है, उसको सलाह भी देना है। परंतु एक बात वो भी ध्यान रखना है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस कोई नहीं लेना चाहता है, अनआस्क्ड, क्योंकि दुनिया में हर एक व्यक्ति सलाह ही देने को तैयार है। उनको लगता है कि मैं ही कल्याण करूं, कोई मिल जाए दुविधा में तो ऐसा झपटते उसके ऊपर, उसको श्रीमत पर और मार्ग में लाने के लिए, कि जैसे बस मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त तो कोई उसको बचा ही नहीं सकता। सारा होना जैसे मेरा है, मेरे ऊपर है। शुभ भावना होना एक बात है, शुभ भावना शुभ कामना है, परंतु जैसे माताओं को बाबा ने कहा, साक्षी भाव भी रहे, अपने को निमित्त भी समझना है, ट्रस्टी भी समझना है, लौकिक में अलौकिक व्यवहार भी हो, लौकिकता ना आ जाए। ये लौकिकता है कि मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा मेरा भाई, ये जो ममत्व जहां आ जाएगा वहां पर उनका कल्याण तो होगा ही नहीं, खुद खुद डिस्टर्ब हो गए। सबसे बड़ी बात है यहां हमारी स्थिति हलचल में आ जाएगी, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके लिए इस विश्वविद्यालय का आशीष भाई, सबसे पहला कायदा कौन सा है? आज के साकार मुरली का प्रश्न है, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलाए मान न हो, ये पहला कायदा है। मतलब पहला कायदा है स्थिति का, सेवा का नहीं, सेवा बाद में है। सब कुछ देखते हुए स्थिति, इससे पहले भी कहा था, स्थिति की कीमत है 1 करोड़, संबंधों की कीमत है 1 लाख और सेवा 1000। वो सेवाओं के पीछे संबंधों को मत बिगाड़ दो। सेवा में किसी की वजह से नुकसान हो गया और उसको इतना डाटा बेचारा ज्ञान छोड़ के चला गया, उसकी स्थिति चलो हमारे संबंध बिगड़ गए, क्योंकि ये जो कांच है ना, इस पे अगर क्रैक हो गया, कितना भी इसको रिपेयर करो, ये रिपेयर हो जाएगा पर वो क्रैक रहेगा। इसके लिए सेवा सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो है प्राथमिकता, स्थिति है। सेवाओं के पीछे इतने पागल हैं कि स्थिति बिगड़ रही है, सेवाओं में कंपटीशन है, वो आगे जा रहा है, मुझे चांस कम दिया जा रहा है, उसको चांस ज्यादा दिया जा रहा है, वो बहन को अच्छी सेवा के लिए भेजा जाता है, मुझे आदिवासी क्षेत्र में भेज देते, उसका नाम हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। वो सेवा तो करना दूर रही पर ये कंपटीशन और यही सब हो रहा है, स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि सारा फोकस बाहर है, फोकस चाहिए अंदर, अंदर है स्थिति। इसके लिए फिर से आते हैं प्रश्न के ऊपर कि उसको पहचाने कैसे। पहचानना तो बहुत मुश्किल आसान है, बहुत ही आसान है। श्रीमत का जो उल्लंघन करना चालू करता है, उस तो बाहर से हम उसको देखो तो योग में नींद आती रहेगी, मुरली में इतना ध्यान नहीं है, सारी बुद्धि जो है वो भोजन में चली जाएगी, क्योंकि जाएगी कहां, एकदम विकारों में तो जाती नहीं है। तो जो जो साधन है, घूमना फिरना, भोजन, कपड़े, ये सब में बुद्धि बाहर, क्योंकि अंदर जो रिक्तता है उसको आत्मा भरेगी ना फिर, क्योंकि ज्ञान में है, तो भरेगी कैसी? बाहर के साधनों से, वस्तुओं से, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब में बुद्धि अपने आप जाने लगेगी और ज्ञान में रुचि अपने आप कम कम होने लगेगी। योग की अवस्था, योग का चिंतन, शब्द ही ऐसे निकलेंगे, पॉलिटिक्स की चर्चा, ये सब अपने आप होने लगेगा। नाम मान की इच्छा, ये सब अपने आप, क्योंकि अंदर रिक्तता है तो आत्मा भरेगी उसको। ज्ञान योग तो वहां है नहीं, तो किसमें भरेगी? कोई फंक्शन है तो उसमें आगे आगे और उसमें अधिक इन्वॉल्वमेंट, और वो करते करते उसका कारण देना कि ज्ञान योग के लिए फिर समय नहीं है क्योंकि सेवाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ज्ञान योग के लिए समय नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो ये कह रहा है, अर्थात अंदर एक गहरी वैक्यूम क्रिएट हो गया है, योग मुक्त और ज्ञान मुक्त हो गई है आत्मा। ज्ञान और योग से मुक्ति हो चुकी है अंदर ही अंदर। ऊपर से सब कुछ चल रहा है, अमृत वेला भी आ रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, परंतु वो सुनना अर्थात युक्त होना नहीं है, वो बैठना अर्थात युक्त होना नहीं है। अंदर से तो विदा हो गया है ज्ञान योग, पता नहीं कहां, दिखाई भी नहीं देता है, रेगिस्तान सा दिखाई देता है। अब कैसे, कुछ तो चाहिए उस रेगिस्तान में, तो फिर व्यक्ति किससे भरता है? कोई दोस्ती बना लेगा किसी को, दोस्ती अलौकिक में लौकिक दोस्ती। बाबा कहते लौकिक में क्या करो, अलौकिक करो, यहां अलौकिक में लौकिक दोस्त बनाना, ऐसा दोस्त जो हमेशा साथ रहे, घूमने साथ जाए, खाना साथ जाए, प्रोग्राम में साथ जाए, मुरली में बाजू में बैठे, योग में अगर वो बैठे तो योग एकदम बाबा से कब लग जाता है पता ही नहीं चलता है। अगर योग में वो नहीं आए तो कहां है, क्यों नहीं आया अभी तक? वो है कहां आखिर, आया क्यों नहीं? उसकी सीट खाली है, अभी योग चालू है, थोड़ी देर के बाद फिर देखा, अभी तक खाली है। अलौकिक में लौकिक दोस्ती, मैत्री, पहचाने तो पहचानना बहुत मुश्किल है, आसान है, उसके बाद उस संग से सावधान कैसे करें? सावधान देते, सावधानी तो देनी है परंतु इनडायरेक्टली, क्योंकि जिसको आप करेक्शन दोगे, दादी कहती है ना, अगर शत्रु बनाना है ब्राह्मण परिवार में तो जाके एक एक को करेक्शन दो कि भाई तुमको आज अमृत वेला मैंने नींद करते देखा, बस गए, छोड़ेगा नहीं 10 दिन अगले, तुमको तुरंत अगर आपने कुछ किया, आपने तो इतनी बिल्कुल रहम भाव भर गया योग में, इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मुझे हो रहा है, बेचारा ये क्या कर रहा है, इतना रहम भर गया, इतना रहम भर गया, हम इतना ज्ञान का अध्ययन चिंतन कर रहे और ये व्यर्थ की बातें कर रहे, उसको जाके हमने इस भाव से बताया भाई तुम भी थोड़ा ज्ञान योग करो, तो फिर वो अवसर ढूंढेगा। कब तुम बिगर ज्ञान योग की बातें करते हो और कब तुमको पकड़े और तुमको ज्ञान सुना दे, तो भारी पड़ गया हमारा करेक्शन देना। इसके लिए सावधानी देना बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत ज्यादा सतर्क होना, बहुत बहुत इसमें साक्षी भाव चाहिए, निमित्त भाव चाहिए, ट्रस्टी भाव चाहिए, आत्मिक दृष्टि चाहिए, भाई भाई की वृत्ति चाहिए, शांति शक्ति का सहयोग देना है, साक्षी भाव, ये सब चाहिए, और धीरज। धीरज मतलब अभी गलती की अभी के अभी मत बताओ, रुको थोड़ा, अभी देखा उसको योग में सोते हुए इंतजार ही कर रहे कब गीत बजता है और इसको पकड़ू, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे और बस चप्पल पहनते पहनते इसको पकड़ के सुना दूं। धैर्य, किस स्थान पर सुनाया जा रहा है, कहां सुनाया जा रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। समय, ऐसा नहीं कि तुरंत, टाइम, बहुत ही धीरज से, धैर्य से, तो ही वो मानेगा, नहीं तो नहीं, तो नुकसान ना हो, ये तो बात अच्छी है। फिर हम कुछ नहीं कर सकते तो शांत न रख सके, अर्थात हमारा ममत्व है इससे, इसलिए हम शांत नहीं रह पा रहे। कोई दूसरा ज्ञान छोड़ के चला जाता है तो हमको कहां कुछ फर्क पड़ता है, इतना पड़ता है क्या? बस रखते हैं, ठीक है, शुभ भावना है। आंखों, इसके लिए बाबा ने कहा ना, देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो, ये इस संस्था का, इस यज्ञ का, इस इंस्टीट्यूशन का, इस सैक्रिफिशियल फायर का पहला नियम है, पहला कायदा है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल ऑफ कंडक्ट है। तो ये तो प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, देखा देखी और संगदोष में क्या फर्क है। देखा देखी तो अलग चीज है, हाँ वो अलग चीज है, कृपया इसके बारे में स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण तो बहुत दिया जा सकता है, आगे का प्रश्न भी लेना है। अगला प्रश्न है, संगम के समय की समाप्ति प्रमाण बाबा ने बार बार सावधानी देते हुए स्व को संपूर्ण और बाप समान बनाने के लिए जो जो होमवर्क के रूप में शिक्षाएं दी, उन सभी बातों को प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए कोई खास पुरुषार्थ व चार्ट क्या है। सबसे पहला इसका उत्तर हम नहीं देंगे, इसका पहला ये जो इच्छा है संपूर्ण बनने की कितनी तीव्र है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आनंद महात्मा बुद्ध से पूछता है कि आप कहते हो कि सभी निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं, तो पा क्यों नहीं रहे, आप इतने सालों से शिक्षाएं दे रहे हो, अभी तक तो कोई भी नहीं पाया। तो कहता है कि तुम एक काम करो, गांव में जाओ और एक फेरिस्ट, एक लिस्ट बनाओ कि कौन कौन निर्वाण जाना चाहता है, पाना चाहता है, निर्वाण पद को पाना चाहता है। तो वो जाता है एक लिस्ट, सबके घर में जाता है और पूछता है आप लोगों को क्या चाहिए। तो कोई बता धन चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, ये चाहिए, वो ही चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो इच्छा प्रकट करता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो लास्ट में वो आता है और कहता है ये है फेरिस्त। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं मैंने ये कहा था कि हर एक पा सकता है, मैंने ये नहीं कहा था कि हर एक पाना चाहता है। ये जो इच्छा है संपन्न बनने की और संपूर्ण बनने की कितनी गहरी है, या केवल प्रश्न पूछना है इसके लिए पूछा जा रहा है। हमें भी सब लोग अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम भी पूछे, हमारी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। केवल प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। हमें तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता है कि मतलब कि सारा ही पुरुषार्थ उसी के लिए है संपन्न बनने का। इच्छा कितनी तीव्र है, ऊपर ऊपर से दिखावे वाली इच्छा है, प्रश्न पूछने तक सीमित इच्छा है कि वास्तव में इच्छा है। अगर जिसकी वास्तव में इच्छा होगी ना वो पूछेगा भी नहीं है, क्योंकि उसको सब कुछ जो है बताया हुआ है बाबा ने। पूछता थोड़ी ना है कोई, पूछ रहा है मतलब अंदर संदेह है, अर्जुन को संदेह है इसलिए तो पूछता है ये सब मेरे है क्या करूं। ऐसा नहीं कि हिंसा से उसको अरुचि है, वैराग आ गया, हिंसा से अरुचि थोड़ी ना है। बदले का भाव तो कूट कूट कर भरा है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी है, पर फिर भी पूछता है। पूछने के पीछे ये भी है कि शायद कोई ऐसा मार्ग बता दे कि जिससे मैं तृप्त हो जाऊं और युद्ध कर लूं, ये भी ऐसा ही है। संपन्न बनना इसकी विधि से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इच्छा कितनी है। जैसे गुरु वो पूछता है भगवान को कैसे पाऊं, तो उसको पानी में डुबो देता है, सबने सुना है, वो तड़पता है निकालो निकालो निकालो, फिर निकालता है कि जैसे जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा किसकी प्यास थी तुम्हें, हवा की, क्या वैसी इच्छा भगवान को पाने की है। जब होगी ना तब किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं, भगवान खुद आ जाएगा। जब यह संपन्न बनने की इच्छा इतनी गहरी हो जाएगी कि मार्ग व्यक्ति खुद ही ढूंढ लेगा कहां से, उसको किसी प्रश्न को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कैसे बने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस इच्छा को और तीव्र किया जाए, तो स्वतः ही मार्ग निकलेगा। अगला प्रश्न है, हमारी मानसिक तथा शारीरिक एकाग्रता का सदा संतुलन बना रहे इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें, तन की शांति और मन की शांति क्या है, साइलेंस पावर को कैसे बढ़ाए। इसमें बहुत सारे प्रश्न है। क्या पूछा है, शारीरिक और मानसिक एकाग्रता, फिजिकल एंड मेंटल कंसंट्रेशन, इसका बैलेंस। तो शारीरिक एकाग्रता का क्या आधार है, शारीरिक एकाग्रता, मन की एकाग्रता, जिसका मन एकाग्र है उसका शरीर एकाग्र है, अपने आप एकाग्र है। जिसका मन ही एकाग्र नहीं है वो योग में बैठते हुए डोलना चालू रहेगा, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी इधर कुछ हो रहा है कभी उधर कुछ हो रहा है। एकाग्रता अर्थात वो नोकीली सुई की जैसा बुद्धि को कर देना जो कि स्थिर रहे, एक चीज पे मन को एकाग्र कर देना। तो शरीर की एकाग्रता, हाँ भोजन का अपना महत्व है, परंतु शरीर की संपूर्ण एकाग्रता का आधार है मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो मन की एकाग्रता के लिए क्या किया जाए? मन के जो संकल्प है, इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती है। सारा ज्ञान योगी मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, पहला कायदा ही यज्ञ का है कि चलायमान न हो, चंचल ना बने, भटकता मन, भटकती बुद्धि, चंचल मन, पुराने संस्कार, ये ना हो। तो मन को एकाग्र करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, अशरीरपन का अभ्यास, ड्रिल का अभ्यास, लक्ष्य प्रति दृढ़ता और समान संकल्पों को, संकल्पों पर ध्यान देना और साइलेंस की शक्ति, और एकांत में। ये सारी बातें हैं। एक अभ्यास और है, वो है साक्षी भाव का अभ्यास। जैसे वो करना है हर एक को, कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ से हम किसी चिड़िया का आवाज सुन रहे हैं और साथ में बहुत सारी दूसरी आवाजें भी है, आंख बंद करके। वैसे तो आज बाबा ने कहा आंख बंद नहीं करो सुबह की मुरली में, वो दूसरी बात है, हम योग की बातें नहीं कह रहे, दूसरा अभ्यास बता रहे हैं कि यहां बैठ के जो चिड़ियों की आवाज आ रही है उस पर बुद्धि को एकाग्र करना और उसे सुनने का प्रयत्न करना। साथ में बहुत सारा शोरगुल है, परंतु उस शोरगुल के बीच में भी जैसे वो शोरगुल है ही नहीं और हम केवल उसको सुनने का प्रयत्न करें, केवल उसको। गाड़ियां भी जा रही है, इधर लोग भी आ रहे हैं, उनके बोलने की भी आवाज है, पर उन सबके होते हुए भी हम खाली उसको सुनने का अभ्यास करें एकाग्रता बढ़ाने के लिए। या फिर ये एक दूसरा, यहां बैठे हैं और आंखें बंद करके जितनी आवाजें आ रही है एकदम सूक्ष्मता से उन आवाजों को सुनने का प्रयत्न करना, केवल सुनने का, और इतनी गहराई से सुनना कि जैसे कि बस वही सुन रहे हैं, बाकी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एक तो पर्टिकुलर एक आवाज को सुनेंगे बहुत आवाजों के बीच में, और फिर वो जो बहुत आवाज है वो विलीन होती जाएगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म उस चिड़िया की जो आवाज है वही हमको सुनाई देती रहेगी। एकाग्रता पहला, दूसरा, तीसरा, कर्म के क्षेत्र में भोजन खा रहे हैं, भोजन खाते खाते एक एक निवाला, एक एक कोर इतनी एकाग्रता से हम खाए कि भोजन करते करते केवल भोजन कर रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, सारा फोकस, सारा अटेंशन केवल केवल भोजन करने पर। हम ये नहीं कह रहे ये योग है या योग के प्रयोग है, वो नहीं है, ये एकाग्रता के प्रयोग है। भोजन करते करते हम देख रहे हैं भोजन में ये है, अब मैंने लिया, अब ये मेरे मुंह की तरफ आ रहा है, अब मैंने इसे जाया, ये भोजन मेरे शरीर में जा रहा है, शक्ति बन रहा है, सारा फोकस, सारा ध्यान, सारे संकल्प, सारा अटेंशन केवल उस पर, चल रहे है रास्ते से, ठीक है, यहां से चलते समय सारा ध्यान इतना मेरी अपनी तरफ है कि बाकी का कुछ मुझे पता ही नहीं, केवल चलना। स्नान कर रहे हैं, स्नान करते करते पानी का एक एक कतरा, एक एक बूंद शरीर पर फैलता हुआ देखना है, मचलता हुआ देखना है, उसकी ठंडक महसूस करना है, यह है एकाग्रता का अभ्यास। नहाते समय, चलते समय, खाते समय, बोलते बोलते, सबसे ज्यादा एकाग्रता हमारी भंग होती है बोलते समय, चर्चा करते हैं ना दिन भर में, एकाग्र का हमको तो पता ही नहीं होता हम क्या बोल रहे, रिकॉर्ड निकालो तो पता चलेगा ये मैंने बोला, अरे बाप रे, वहां पर अपने ही बोल के ऊपर एकाग्र, जैसे मैं नहीं कोई और ही बोल रहा है। एक दूसरा एकाग्रता है अपने विचारों को देखने की एकाग्रता, जैसे मैं सड़क पर खड़ा हूं और लोग आ रहे हैं जा रहे, गाड़ी आ रही है, स्कूटर आ रहे है, पैदल वाले आ रहे है, सब आ रहे, मैं देख रहा हूं, उसी तरह मैं आत्मा देख रही हूं, ये विचार आ रहे हैं और जा रहे, सड़क है, एक सड़क पर विचार आ रहे, सड़क पर विचार जा रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा भाई तुमने देखा है कि ओम शांति भवन, चलो तुमको दिखाता हूं, कुछ नहीं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है उनको। तो ये एक एकाग्रता को, जब मन एकाग्र हो जाएगा तो शरीर अपने आप एकाग्र हो जाएगा, ये संतुलन अपने आप आएगा, ठीक है। ओम शांति।